ये आकाशवाणी है। अब आप रत्ना पांडे से समाचार सुनिए। हरियाणा सरकार ने पुलिस, खनन और जेल विभागों में कुछ पदों पर भर्ती में अग्निवीरों को 10% आरक्षण देने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज चंडीगढ़ में इसकी घोषणा करते हुए कहा कि राज्य में कांस्टेबल, खनन रक्षक, वन रक्षक, जेल वार्डन और विशेष पुलिस अधिकारी एसपीओ के पदों पर सीधी भर्ती में अग्निवीरों को 10% आरक्षण दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकारी विभागों, बोर्डों और निगमों में तैनाती के इच्छुक अग्निवीरों को मैट्रिक स्कोर में प्राथमिकता दी जाएगी। उन्होंने कहा कि अग्निवीरों को 30,000 रूपये प्रतिमाह से अधिक वेतन देने वाली औद्योगिक इकाइयों को राज्य सरकार 60,000 रूपये की वार्षिक सब्सिडी देगी। श्री सैनी ने कहा कि स्वयं का उद्यम स्थापित करने वाले अग्निवीरों को 5,00,000 रूपये तक का ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि अग्निवीरों को भी प्राथमिकता के आधार पर शस्त्र लाइसेंस दिया जाएगा। अगर कोई अग्निवीर दुर्घटनाग्रस्त होता है तो भारत सरकार की सड़क परिवहन राजमार्ग योजना के अंतर्गत मुआवजा और निशुल्क उपचार की सुविधा दी जाएगी। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि भारत की विश्व की फार्मेसी के रूप में प्रतिष्ठा के अनुरूप विश्व स्तरीय दवा नियामक ढांचा तैयार किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए दवा और चिकित्सा उपकरण उद्योग के बीच लगातार विचार विमर्श होता रहना चाहिए। श्री नड्डा ने आज दवाओं, सौंदर्य प्रसाधनों और चिकित्सा उपकरणों के विनियमन पर एक समीक्षा बैठक की। उन्होंने कहा कि वैश्विक स्तर पर दवाओं के उत्पादक और निर्यातक के तौर पर भारत अग्रणी है। उन्होंने केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन सीडीएससीओ से वैश्विक मानकों के अनुरूप समय सीमा के साथ एक रोडमैप तैयार करने को कहा। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि देश के युवा भविष्य के नीति निर्माता हैं। उन्होंने कहा कि सरकार विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के माध्यम से युवाओं के सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है। केंद्रीय मंत्री ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय युवा और राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार विजेताओं से संवाद किया। इस दौरान डॉ मांडविया ने कहा कि युवाओं की बदलाव लाने की क्षमता से देश प्रगति और नवाचार की ओर अग्रसर होगा। कार्यक्रम का उद्देश्य पुरस्कार विजेता युवाओं की उपलब्धियों का जश्न मनाना और मेरा युवा भारत मंच को और अधिक उपयोगी बनाने पर चर्चा करना था। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने सुलभ और किफायती स्वास्थ्य देखभाल के लिए नवीनतम तकनीकों का उपयोग करने को कहा है। उन्होंने कहा कि प्रौद्योगिकी से स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में क्रांति आ रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग टूल के एक साथ उपयोग से दक्षता में वृद्धि और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार हो सकता है। केंद्रीय मंत्री ने आज नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में कहा कि चिकित्सा, पर्यटन और स्वास्थ्य देखभाल के क्षेत्र में भारत सबसे अधिक मांग वाला गंतव्य देश बन गया है। ओमान में कोमोरोस ध्वज वाले तेल टैंकर एमवी प्रेस्टीज फाल्कन के पलटने के बाद के तलाशी और बचाव के लिए एक भारतीय नौसैनिक युद्धपोत और एक P-8I समुद्री गश्ती विमान भेजा गया है। ये टैंकर रास मद्रकाह से लगभग 25 समुद्री मील दक्षिण पूर्व में पलट गया, जिसमें कुल 16 सदस्यीय चालक दल में 13 भारतीय और 3 श्रीलंका के नागरिक शामिल हैं। रविवार को स्थानीय समयानुसार रात करीब 10 बजे जहाज ने ओमान के तट से एक आपात सूचना भेजी थी। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने आज मॉरिशस में वहां के पूर्व प्रधानमंत्रियों डॉ नवीन राम गुलाम और पॉल वेरेंजर से मुलाकात की। डॉ नवीन राम गुलाम से मुलाकात के बाद श्री जयशंकर ने कहा कि उन्होंने लंबे समय से चली आ रही द्विपक्षीय साझेदारी तथा इसको और सुदृढ़ करने पर चर्चा की। विदेश मंत्री ने कहा कि श्री पॉल के साथ मुलाकात में दोनों नेताओं के बीच मौजूदा वैश्विक मुद्दों पर सार्थक बातचीत हुई। पेरिस ओलंपिक में भारत के 117 खिलाड़ी भाग लेंगे। खेल मंत्रालय ने इसके अलावा स्टाफ के 140 सदस्यों को भी मंजूरी दी है, जिसमें खेल अधिकारी भी शामिल हैं। मौसम विभाग ने कल दक्षिण कर्नाटक, तटीय कर्नाटक, सौराष्ट्र और कच्छ, कोंकण और गोवा में अत्यधिक वर्षा के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा कल तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, केरल, माहे, तटीय आंध्र प्रदेश और यनम में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।